नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सऊदी अरब के मदीना में हैदराबाद के उमरा जायरीन को ले जा रही एक बस डीजल टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई। बस में 45 यात्री सवार थे। एक रिपोर्ट।
ये दुर्घटना भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे मुफरीहाट नाम के स्थान पर हुई। उमराह पूरा करने के बाद ये बस मक्का से रवाना हुई थी। डीजल टैंकर से टकराते ही बस में तुरंत आग लग गई। जानकारी के अनुसार मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। सभी मृतक हैदराबाद के थे। हादसे में जीवित बचे एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सऊदी अधिकारियों और तेलंगाना सरकार के साथ समन्वय कर रहे हैं। भारतीय दूतावास भी सऊदी हज और उमरा मंत्रालय के साथ संपर्क में है। पीड़ित मदीना के 4 अस्पतालों में है। इन अस्पतालों के नाम है सऊदी जर्मन अस्पताल, किंग फहद अस्पताल, मिकात अस्पताल और प्रिंस सुल्तान सैन्य अस्पताल। भारतीय राजनयिक कर्मचारियों को सहयोग और सहायता के लिए इन 4 स्थानों पर तैनात किया गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि रियाद स्थित दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास दुर्घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और परिवारों को पूरी सहायता प्रदान कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में वे प्रभावित परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय अधिकारी भी सऊदी अरब के अधिकारियों के संपर्क में हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि भारत दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि बस में सवार कई यात्री हैदराबाद के थे। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को बस दुर्घटना में मारे गए लोगों के विवरण पता लगाने के निर्देश दिए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। नई दिल्ली में चाणक्य रक्षा संवाद के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था जो 88 घंटों में खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी प्रकार के युद्ध का जवाब देने के लिए तैयार है।
आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई। अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट हैं। रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ एक हुआ था और वो भी पकड़ा। तो कहने का ये मतलब है पत्थरबाजी नहीं होती है, नारेबाजी नहीं होती है, बंद नहीं होते हैं, सब चीजें रुक गई हैं। तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है। आशा और विश्वास की जो एक जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है और भारत के प्रति जो एक सम्मोह है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ का मोह भंग होता जा रहा है।
दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट के आरोपी आमिर राशिद अली को 10 दिन की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। उमर मोहम्मद नबी के साथ साजिश रचने के आरोपी कश्मीर निवासी अली को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने एनआईए की हिरासत में पूछताछ की अर्जी स्वीकार कर ली। एनआईए ने कल अली को गिरफ्तार किया था। हमले में इस्तेमाल की गई कार इसी के नाम पर पंजीकृत थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल को भंग करने की सिफारिश की गई। वर्तमान सरकार की अंतिम मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को मंत्रिमंडल भंग करने संबंधी एक पत्र सौंपा। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अमरीका से एलपीजी के आयात के लिए 1 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये कंपनियां प्रतिवर्ष 22 लाख टन एलपीजी आयात करेंगी। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी ठहराया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।